हरे कृष्ण श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 11वां अध्याय श्लोक संख्या 37। इस आध्यात्मिक ज्ञान में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनाशलाखय, चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले, स्वयं रूपः कदा महयं ददाति स्वपदान्तिकम्। वंशी विभूषितकरा नवनीरधाभा, पीताम्बरधरुणबिम्बफल धरोष्ठा, पूर्णेन्द्रसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रा, कृष्णात् परं किमपि तत्त्व अहं न जाने। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्ति रीस्तवे, वेदे साङ्गपत् कमोपनिषदे गायन्ति यं सामगा, ध्यानावस्थित तत् गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो, यस्यान्तं न विदो सुरासुरगणा, देवाय तस्मे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायामुदीरये, नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवती युत्तमश्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिकी, पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकम्, भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृन्द, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। प्रथम स्कंद 11वां अध्याय जिसका शीर्षक है भगवान श्री कृष्ण का द्वारिका में प्रवेश। श्लोक संख्या 36। जैसे कि हमने श्लोक संख्या 37 और जैसे कि हमने श्लोक नंबर 36 में पढ़ा था, उत्थाम भाव पिशुनाम अलवल्गहास व्रीरावलोकनिहितो मदनोपियासाम सम्मुह्य चापम अजाहत प्रमदोत्तमास्ता यस्येन्द्रियं विमिथुतं कुहकैर्णशेक। के वो भगवान भले ही 16,108 रानियों के साथ रहते थे, यद्यपि रानियों की मृदु मुस्कान तथा बांकी चितवन अत्यंत विलम्ब तथा उत्तेजित थी, जिससे साक्षात कामदेव मोहित होकर अपना धनुष गिरा देते थे। व्रीरावलोकनिहितो मदनोपियास्यम, यानी कि कामदेव भी विवश हो जाते अगर उनको देखते तो अपना धनुष प्राण गिरा देते। यहाँ तक कि अत्यंत सहर्षो शिव भी उनके शिकार हो सकते थे तो भी। यस्येन्द्रियं विमथितुं कुहकैर् नशेकः, लेकिन फिर भी वे अपने समस्त हाव भाव तथा आकर्षण से भगवान की इंद्रियों को विचलित नहीं कर सके। अर्थात भगवान ने इनकी हाव भाव को देखकर या काम के वशीभूत होकर उन्हें नहीं अपनाया था, बल्कि उनके निश्चल प्रेम को देखकर उन्हें अपनाया था, ना कि अपनी इंद्रियों को सुख पहुंचाने के लिए। तो ये तो बस भगवान की लीला थी, वो समर्थ हैं, तो उन्होंने गृहस्थ की लीला की थी इस प्रकार। लेकिन गृहस्थ की लीला में भी उन्होंने ऐसा आचरण किया जो कि कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता, अर्थात 16,108 रानियों के साथ पृथक पृथक स्वरूप में रहे भगवान और पृथक पृथक रानी को, जैसे जितनी भी रानियां थी उतने महल थे उनके, उतना ही उनको उनके साथ ही भगवान रहते थे। उनकी हर वस्तु हर आवश्यकता के लिए, ऐसा नहीं था कि रानियों को कभी भगवान को बोलना पड़ता था कि ये वस्तु हमारे पास नहीं है या हमें, भगवान स्वयं उनकी सारी आवश्यकताएं पूरी कर देते थे। किसी को कुछ कहने की आवश्यकता, मतलब ऐसा ग्रस्त जीवन भगवान ने उन रानियों के साथ बिताया जो किसी के लिए भी संभव नहीं है। वो भगवान थे तभी ऐसा कर सके। परंतु आगे यहाँ पर श्लोक नंबर 37 में सुत गोस्वामी बहुत ही सुंदर और गंभीर बात कह रहे हैं। वे कहते हैं, कृपया मेरे साथ साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। सुत गोस्वामी कह रहे हैं, तमयम मन्यति लोको यसंगम अपि संगिनम आत्मोपम येन मुञ्च मनुजम व्याकृर्वाणम यतो बुधः तमयम मन्यते लोको यसंगम अपि संगिनम आत्मोपम येन मनुजम व्याकृर्वाणम यतो बुधः तमयम मन्यते लोको यसंगम अपि संगिनम आत्मोपम येन मनुजम व्याकृर्वाणम यतो बुधः। शब्दात् तमयम मन्यते लोको, तम मतलब कृष्ण को, यो कृष्ण भगवान है जो इस प्रकार की लीला करते हैं, उन कृष्ण को अयम, अयम मतलब जो साधारण लोग होते हैं, लोको मतलब जो साधारण लोग होते हैं जो संसार में बद्ध जीव रहते हैं, मन्यते, मन्यते मतलब मन में ऐसा सोचते हैं, उनके विषय में ऐसा विचार करते हैं। क्या विचार करते हैं? ही निश्चय ही असंगीन असंगम یعنی کہ اناسکت ہیں اپی اناسکت ہوتے ہوئے، اپی مطلب اس کے ہوتے ہوئے بھی سنگینم، یعنی کیوں یہ بھگوان تو کیول لیلا کرتے تھے لیکن جو بدھ جیو ہیں سامانیہ لوگ ہیں وہ کیونکہ سامانیہ استھتی میں ہی سوچ سکتے ہیں، ان کی بدھی سادھارن کیونکہ وہ منشیہ ہیں تو وہ منشیہ کی طرح ہی بھگوان کو دیکھتے ہیں، اور یہ لوگ مانتے ہیں کہ کرشنا استریوں میں آسکت ہیں، کیا مانتے ہیں یہاں پر بتایا اسنگم اپی سنگینم، بھلے ہی بھگوان اسنگ ہیں بھگوان کسی بھی استری کی اور آسکت نہیں ہوتے ہیں، نہ ہی یہ کیول اندر ترپتی کے لیے بھگوان کر رہے ہیں، بھگوان کرشنا کو وہ آسکت مانتے ہیں بلکہ یہ اسنگی ہیں، یہاں پر بتایا تمیم منیتے لوکو یسنگم اپی سنگینم، وہ حالانکہ اسنگ ہیں اناسکت ہیں پھر بھی بھگوان کو سوچتے ہیں کہ یہ سنگی ہیں آسکتی ہیں ایسا کرتے ہیں، اور آگے شب روپا جی آگے گوسوامی جی کہتے ہیں آتموپم یینا، ارتھات سوئم اوپم یہ مطلب اپنے ساتھ تلنا کر کے، کیونکہ وہ خود منشیہ ہیں سادھارن ہیں ان کی سوچ اس سے آگے جاتی نہیں ہے اور وہ بھگوان کو اپنے جیسا سمجھنے لگتے ہیں، اور اس کا ایک کارن یہ بھی ہے کیونکہ بھگوان اتنی وچتر لیلا کرتے ہیں اور بھگوان کی کچھ لیلائیں ایسی ہیں کہ جن کو دیکھ کر کے واقعی میں لگتا ہے کہ کوئی سادھارن ہوگا، یہ کوئی سادھارن ہی ہوگا اسی لیے ایسا کاریہ کر رہا ہے، استریاں لے کے آ رہا ہے یا پھر راز کھیل رہا ہے، اتنی اچھا کر رہا ہے اس سے ملنے کے لیے، یہ کر تو بھگوان کی لیلا واسطو میں ہم نے بھاگوتم مہاپران کے پرتھم شلوک میں پڑھا کہ مہینتی یت سوریہ، بڑے بڑے دیوتا بھی بھگوان کو لیلا کو دیکھ کر موہت ہو جاتے ہیں، اندر اور برہما جیسے دیوتا بھی بھگوان کی لیلا کی واستوکتا کو نہیں سمجھ سکے، تو پھر اگر سادھارن ویکتی کے من میں ایسی بات آتی ہے کہ یہ سادھارن ہے یا استری لولپت ہے یا سنگی ہے یا آسکت ہے، تو اس میں اتنا آشچریہ کرنے کی آوشیکتا نہیں ہے، اسی لیے یہاں سوت گوسوامی بتاتے ہیں اس کا کارن، وہ کہتے ہیں کہ آتموپم یینا منوجم، کہ وہ اپنے جیسا منوجم مطلب سامانیہ منشیہ، وہ بھگوان کو اپنے جیسا سامانیہ منشیہ مانتے ہیں، کیوں ویاپروانم یعنی لگے رہ کر یت، کیونکہ ابودھا اجیان کے کارن، اب کیونکہ وہ اپنے اجیان کے کارن، اجیانتا کیا ہے دیہاتم بدھی اجیان ہے، گیان کیا ہے کہ میں آتما ہوں، اب میں آتما ہوں تو میں بھگوان کا انش ہوں، جب میں انش ہو کر بھی اتنا آتما کے اندر قید ہو کر بھی اتنا سکریہ ہوں، اتنا کاریہ کر رہا ہوں، جو بھی کر رہا ہوں، تو پھر میں جس کا انش ہوں وہ بھگوان کچھ بھی کر سکتا ہے، ایک ذرہ جو بال کے 10,000 حصے کے برابر جو آتما ہمارے شریر میں بیٹھی ہوئی ہے وہ اتنا سکریہ ہے تو بھگوان کیا نہیں کر سکتے، یہ اگر گیان ہو جائے تو پھر بھگوان کچھ بھی کرے گا ہمیں سندیہ نہیں ہوگا، لیکن کیوں کہ اگیانتا ہے، ابودھا صاف لکھا سدھ گوسوامی کہتے ہیں یا تو ابودھا، کیوں کہ اگیانتا ہے، کیوں کہ مورکھتا ہے، وہ واستوک گیان کو نہیں جانتے دیہاتم بدھی میں، اسی لیے بھگوان کو سامانیہ منشیہ مانتے ہیں جب وہ ایسی لیلا کرتے ہیں، انواد دیکھیے سامانیہ بھوتکتوادی بدھ جیو سوچتے ہیں کہ بھگوان انہی میں سے ہیں، وہ اپنے اگیان کے کارن سوچتے ہیں کہ بھگوان پر پدارتھ کا پربھاؤ پڑتا ہے بھلے ہی وہ اناسکت رہتے ہیں، شریلا پروپاد جی اتیانت ہی سندر ریتی سے سمجھائیں گے تاتپریہ شریلا پروپاد دوارا، شریلا پروپاد کی جائے ہو، شریلا پروپاد جی کہتے ہیں یہاں پر ابودھا شبد مہتوپورن ہے، جو لاسٹ شبد ہے نا یا تو بودھا، ابودھا مطلب جس کے پاس گیان نہیں، شریلا پروپاد جی کہتے ہیں کیول اگیان وش مورکھ سنساری ویوادک پرمیشور کو غلط سمجھتے ہیں اور وگیاپن دوارا ابودھ لوگوں میں اپنے مورکھتا پورن وچاروں کا پرساد کرتے ہیں، بھگوان سری کرشن آدی بھگوان ہیں اور جب وہ ساکشات سبوں کے سمکش ودیمان تھے تو तो उन्होंने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अपनी पूर्ण दिव्य शक्ति का प्रदर्शन किया, जैसा कि हम श्रीमद् भागवतम के प्रथम श्लोक में ही बता चुके हैं। यहाँ श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं, क्योंकि उन्हें कोई ज्ञान नहीं है, वो अबोध हैं, इसीलिए वो इस तरह की बात करते हैं। लेकिन वास्तव में भगवान तो सर्वशक्तिमान है, जैसा कि शुरू से हम श्रीमद् भागवतम महापुराण से पढ़ते आए हैं। शुरू वाले श्लोक में अवेद व्यास जी ने बताया था कि जो कुछ हो रहा है, जो सृष्टि उत्पत्ति प्रलय हर एक वस्तु के कारण है, स्वराट है, सर्वशक्तिमान है, वो सब कुछ कर सकते हैं। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, भगवान इच्छानुसार कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र हैं, किंतु उनके सारे कार्य सच्चित आनंद स्वरूप में होते हैं। केवल मूर्ख संसारी लोग ही गीता तथा उपनिषदों के पुष्ट ज्ञान तथा आनंद के दिव्य रूप से अपरिचित होने के कारण उन्हें गलत कहते हैं। वास्तव में यदि एक बार किसी को शुद्ध भक्त के द्वारा श्रीमद् भगवद गीता, भागवतम इत्यादि का ज्ञान प्राप्त हो जाए ना, तब वो कभी भी भगवान के विषय में गलत राय कायम ना करें। भगवान को समझना आसान हो जाता है जब हम किसी शुद्ध भक्त के द्वारा समझते हैं। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता बताते हैं, भक्त्या माम अभिजानंती। जब आप किसी भक्त के द्वारा ज्ञान प्राप्त करोगे, उनकी सेवा करोगे, उनको प्रणाम करोगे, तो भगवान कहते हैं, तद विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञान ज्ञानी न तत्वदर्श। वो वास्तव में ज्ञानी है, वो तत्वदर्शिना है, वो तत्व को जानते हैं, और उनसे जाकर सीखो तो आपको तत्व समझ में आएगा, फिर भगवान के विषय में गलत धारणा नहीं आप अपनाओगे। श्रील प्रभुपाद जी आगे कहते हैं, उनकी विविध शक्तियां पूर्णतया प्राकृतिक योजना के अनुसार कार्य करती हैं, और अपनी विभिन्न शक्तियों में सारे कार्य करते हुए वे नित्य परम स्वतंत्र हैं। ये बात भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता 9.4 में बताते हैं, माया तदमिदम सर्वम जगद व्यक्त मूर्तिना अस्थानी सर्वभूतानि न चाहम तेजोवसिता। भगवान कहते हैं, यह संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है, समस्त जीव मुझ में हैं, किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। इसे श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर कहते हैं, अपनी विविध शक्तियाँ पूर्णतया प्राकृतिक योजना के अनुसार कार्य करती हैं उनकी, और वे विभिन्न शक्तियों में सारे कार्य करते हुए भी नित्य परम स्वतंत्र रहते हैं। वास्तव में जो भगवान है वो इन शक्तियों के अंडर में कभी नहीं आते, वो सदैव स्वतंत्र रहते हैं। भगवान मायापति है, माया के अंदर थोड़ी ना आएंगे। तो यहाँ श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, जब वे विभिन्न जीवों पर अहितु की कृपा करके भौतिक संसार में अवतरित होते हैं, तो वे अपनी निजी शक्ति से ही ऐसा करते हैं। वे प्रकृति के गुणों से किसी तरह बद्ध नहीं होते, और वे अपने मूल रूप में प्रकट होते हैं। श्रील प्रभुपाद जी कितना सुंदर बता रहे हैं, ये तो भगवान की कृपा है कि संसार में आकर बद्ध जीवों के सामने या उनके ऊपर कृपा दृशाते हुए भगवान लीला करते हैं, वरना आज हम बद्ध जीव भगवान के विषय में कुछ न बोल सकते। भगवान क्या करते हैं, भगवान कैसे हैं, भगवान दिखते कैसे हैं, भगवान व्यवहार कैसे करते हैं, ये सब तो भगवान की कृपा है। वो क्या करते हैं, गुणों के कारण बंद कर इस संसार में अवतरित, इस संसार में नहीं आते, बल्कि वो प्रकृति के गुणों से किसी तरह बद्ध नहीं होते, और वे अपने मूल रूप में प्रकट होते हैं। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, मीमांसक उन्हें ब्रह्मवश परम पुरुष के रूप में जानते हैं, और वे उनके निराकार स्वरूप को अव्यक्त ब्रह्म मान लेते हैं। ऐसी धारणा बद्ध जीवन का ही परिणाम है, क्योंकि वे अपनी निजी क्षमता से आगे नहीं बढ़ पाते। जो चिंतन करते रहते हैं, वो सोचते हैं कि भगवान तो क्या है, निराकार है। तो वास्तव में ये श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, ऐसी धारणा भी बद्ध जीवन के कारण ही है, क्योंकि वो वास्तविकता को नहीं समझ सकते, वो अपनी निजी क्षमता से आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं, तो भगवान को सच्चित आनंद स्वरूप में नहीं जान सकते। अतएव जो भगवान को अपनी सीमित शक्ति के स्तर पर समझता है, वह केवल सामान्य व्यक्ति होता है। ऐसे व्यक्ति को यह
कभी विश्वास नहीं होता कि भगवान प्रकृति के गुणों से किसी तरह प्रभावित नहीं होते। वो सामान्य व्यक्ति है, सामान्य बुद्धि है, वो भला भगवान के विषय में क्या समझ सकता है। वो सामान्य बुद्धि से तो भौतिक ज्ञान को भी नहीं समझ सकता, तो वो समझता है प्रकृति के गुणों से किसी तरह प्रभावित नहीं होते, ऐसा कैसे हो सकता है। प्रकृति में आएंगे तो प्रकृति के गुणों में जब वो जरूर प्रभावित होंगे, उनको ऐसा लगता है। वह यह नहीं जान पाता कि सूर्य सदैव दूषित पदार्थ से प्रभावित रहा करता है, सॉरी अप्रभावित रहा करता है। यहाँ श्री प्रभुपाद जी कितनी अच्छी मिसाल दे रहे हैं कि सूर्य अपना प्रकाश भले ही किसी भी दूषित पदार्थ पर डालता है, वो कभी दूषित नहीं होता। तो मीमांसिक सदैव अपने व्यावहारिक ज्ञान के आधार पर हर वस्तु को तोलते हैं, वो अपनी बुद्धि के द्वारा चिंतन करके हर वस्तु को तोलते हैं। अतः जब भगवान विवाह बंधन में सामान्य व्यक्ति की भांति कर्म करते हुए पाए जाते हैं, तो वे उन्हें अपने समान ही समझने लगते हैं और यह विचार नहीं करते कि भगवान के एक साथ 16,000 या इससे भी अधिक पत्नियां हो सकती हैं। उनको लगता है कि साधारण है तो ऐसा कैसे कर सकते हैं, उनको तो साधारण ही बुद्धि है, तो एक व्यक्ति 16,108 पत्नियों के साथ वो कैसे रह सकता है, कैसे कर सकता है। तो उनको सवाल उत्पन्न करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि वो यहाँ सुध गोस्वामी ने कहा आत्माओपम ये न मनुष्य, वो अपने समान सामान्य मनुष्य मानते हैं ना उनको, तो इसीलिए वो भगवान के ऊपर ऐसा आरोप लगाते हैं। आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं अल्प ज्ञान के कारण वे चित्र के एक पक्ष को देखते हैं और दूसरे पक्ष पर अविश्वास करते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि अज्ञानवश ही वे कृष्ण को अपने समान मानते हैं और अपने निष्कर्ष निकालते हैं जो श्रीमद् भागवतम के अनुसार निरर्थक तथा अप्रामाणिक होते हैं। श्री प्रभुपाद जी इतनी सुंदर बात बता रहे हैं कि वो एक पक्ष को तो देखते हैं कि उन्होंने 16,108 रानियों के साथ विवाह किया है तो उन्होंने ऐसा किया, लेकिन जो दूसरा पक्ष है कि वो छोटे से होते हैं और इतने सारे राक्षसों को मारते हैं, 7 दिन तक एक छोटी सी उंगली पर, उल्टे हाथ की छोटी सी उंगली, जब 7 साल के बच्चे वो ऐसा उठाते हैं उसको नहीं देखते, एक छोटा सा बच्चा इतनी बड़ी पूतना को मार देता है, अघासुर को मार देता है, बकासुर को मार देता है, ब्रह्मा जी को भी मोहित कर देता है अपने अंदर से, कितने सारे गौए और ग्वाल बाल जो ब्रह्मा जी चुरा के देते हैं, वो सब नहीं देखते, केवल यही देखते हैं कि भगवान ने 16,108 से शादी क्यों की, भगवान ने राज क्यों रचाई, भगवान ने ऐसा क्यों किया, जो चीज भगवान की समझ में आ जाती है ना, भाई भगवान ने चोरी क्यों की, वो भगवान है तो वो उनके लिए सब कुछ कर सकते हैं। वास्तव में भगवान लीला करते हैं, अपने प्रेम का आदान प्रदान करते हैं। भगवान कहते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजामि, और वो करके दिखाते हैं कि जब 16,108 पत्नियां भी लड़कियां भी अगर भगवान से विवाह करके उनके साथ ग्रस्त जीवन गुजारने के लिए वो हृदय से यदि याचना करती हैं भगवान की, तो भगवान उन सबको स्वीकार करते हैं। भगवान इतने सीमित नहीं है कि किसी की इच्छा को पूरा करें और किसी की ना करें। तो यहाँ पर भगवान बताते हैं कि तुम जिस भाव से मुझे पूजना चाहते हो, मेरे चरण में आना चाहते हो, उसी भाव से स्वीकार करता। लेकिन यहाँ श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि वास्तव में वो नहीं जानते, इसका अर्थ ये हुआ कि अज्ञानवश ही वो कृष्ण को अपने समान मानते हैं और निष्कर्ष निकालते हैं कि भगवान सामान्य है। क्यों? क्योंकि अज्ञान है, वो नहीं समझते भगवान की वास्तविकता को। और श्री प्रभुपाद जी ने साफ साफ कह दिया कि श्रीमद् भागवतम के अनुसार ये सारे जो इनकी मीमांसक ये सब बातें हैं वो सब निरर्थक हैं, अप्रामाणिक हैं। प्रामाणिक क्या है? भगवान कृष्ण कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो भगवान जो कार्य करते हैं उनको सुनकर उनसे आनंदित होना है, वास्तविक लाभ प्राप्त करना है, ना कि भगवान के ऊपर आरोप लगाना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, कृपया साथ रहिएगा, मेरे लिए प्रार्थना अवश्य कीजिएगा कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे से कर सकूं। हरे कृष्ण।